श्रेष्ठ आत्मा मालिक भी हो और फिर बालक भी हो। एक है मालिकपन का रूहानी नशा और दूसरा है बालकपन का रूहानी नशा। तो बाबा कह रहे हैं सभी को डबल नशा रहता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा मालिक भी हूँ और फिर बालक भी हूँ। एक है मालिकपन का रूहानी नशा और दूसरा है बालकपन का रूहानी नशा। यह डबल नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है? बालक सदा हो या कभी कभी हो? बालक अर्थात सदा बालक ही है ना, परमात्मा बालक है। हम कौन है? परमात्मा बालक, ईश्वरीय बालक, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय संतति, ईश्वरीय औलाद। तो परमात्मा बालक है और फिर सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले मालिक है। तो ऐसा मालिकपन और ऐसा बालकपन सारे कल्प में और कोई समय नहीं रह सकता। सतयुग में भी परमात्मा बच्चे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सतयुग दैवी संतान, देवताओं के बच्चे हो जाएंगे। तीनों कालों को जानने वाले मालिक, यह मालिकपन भी इस समय ही रहता है। तो जब इस समय ही है, बाद में मर्ज हो जाएगा, तो सदा चाहिए ना, डबल नशा रखो। इस डबल नशे से डबल प्राप्ति होगी। मालिकपन से अपनी अनुभूति होती है और बालकपन के नशे से अपनी प्राप्ति। भिन्न भिन्न प्राप्तियां है ना। यह रूहानी नशा नुकसान वाला नहीं है, रूहानी है ना। देहभान के नशे नुकसान में लाते हैं, वे नशे भी अनेक है। देहभान के कितने नशे हैं? बहुत है। कौन कौन से देहभान के नशे? देहभान का नशा, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझ में ये गुण है, मुझ में वो गुण है, मेरे जैसा कोई नहीं है, और मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ, मैंने दिया, मेरा विचार सागर मंथन बहुत अच्छा है, मैंने ये किया है, मेरी पहचान बहुत है, मेरी पहुंच बहुत है। तो ये सब है देहभान के नशे, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ। लेकिन सभी है नुकसान देने वाले, नीचे लाने वाले। और बाबा हमको याद दिला रहे हैं डबल नशा, मैं आत्मा मालिक और मैं आत्मा बालक, मालिकपन और बालकपन का नशा। यह रूहानी नशा ऊंचा ले जाता है, इसलिए नुकसान नहीं है इस नशे में। बाकी जो भी नशे है संसार में, जो भी नशे है वो नुकसान वाले है। यहाँ पर जो देहभान के नशे है वो भी नुकसान वाले है, नीचे लाने वाले है, पर ये नशा ऊपर ले जाने वाला है, उड़ती कला का अनुभव करने वाला है, कराने वाला है। यह है ही बाप के, क्या बाप के नशा? नारायणी नशा, ईश्वरीय नशा, इलाही मस्ती, मौलाई मस्ती। तो बाप कहने से बचपन याद आता है ना, बाप कहने से बचपन याद आता है। बाप अर्थात मैं बच्चा हूं, तभी बाप कहते हैं। तो सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा बाबा, या और कुछ याद रहता है? बाबा कहने वाला कौन? बच्चा हुआ ना, तो सदा बच्चा है और सदा ही रहेंगे। तो क्या कहा बाबा ने, सभी को डबल नशा रहता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा मालिक भी हूँ और बालक भी हूँ। एक है मालिकपन का रूहानी नशा और दूसरा है बालकपन का रूहानी नशा। यह डबल नशा सदा रहता है या कभी कभी रहता है? बालक सदा हो है, कभी कभी नहीं। बालक सदा बालक ही है ना, परमात्मा बालक। तो हम सभी हैं परमात्मा बालक। जहां बच्चे हैं वहां बाप हर बच्चे के साथ है। ये आज के मुरली में एक वाक्य है। जहां बच्चा है वहां बाप हर बच्चे के साथ है। बाप की छत्र छाया के अंदर माया की छाया आ नहीं सकती। सेफ्टी का स्थान है, बाबा ने कहा आज लंदन से। और फिर सारे आदि मध्य अंत को जानने वाले मालिक है, नॉलेजफुल। तो ऐसा मालिकपन और ऐसा बालकपन सारे कल्प में और कोई समय नहीं रह सकता। सतयुग में परमात्मा बच्चे नहीं है, देवताओं के बच्चे, तीनों कालों को जानने वाले मालिक, यह मालिकपन अभी है, इस समय है। बाद में मर्ज हो जाएगा, तो डबल नशा रखो। तो इस डबल नशे में प्राप्तियां है, अनुभूति है, भिन्न भिन्न प्राप्तियां है। यह रूहानी नशा नुकसान वाला नहीं है, वो रूहानी वो नशा नुकसान वाला है, नीचे लाने वाला है, देहवान वाला है। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। तो ये नशे हैं ही बाप के। तो बाप कहने से क्या याद आता है? बचपन। बाप
बचपन
कहने से वर्षे की खुशबू आती है। अल्लाह, खुदा, ईश्वर, भगवान कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती है, सुगंध आती है बाप कहने से। तो बाप कहने से बचपन याद आता है, बाबा कहते हैं। तो बाप अर्थात मैं बच्चा हूं, तभी बाप कहते हैं ना। बाबा कहने वाला कौन? बच्चा। बच्चा हुआ ना, तो सदा बच्चे हैं और सदा ही रहेंगे। सदा इस भाग्य को सामने रखो, अर्थात स्मृति में रखो। कौन हूं, किसका हूं और क्या मिला? इस तीन वाक्यों में सारा ज्ञान समाया हुआ है। कौन हूं, किसका हूं, क्या मिला? पहला, मैं आत्मा। किसका? उसका। और तीसरा, प्राप्तियों की लिस्ट, भाग्य की लिस्ट। क्या मिला उसकी कितनी लंबी लिस्ट है। लिस्ट को याद रखते हो या सिर्फ कॉपी में रखते हो? लिस्ट को याद रखते हो या सिर्फ कॉपी में रखते हो? कॉपी में तो सबके पास होगा, लेकिन बुद्धि में इमर्ज हो। मैं कौन, मैं किसका और क्या क्या मिला।
चाबी बुद्धि
तो कितने उत्तर आएंगे? बहुत उत्तर है ना, उत्तर देने में और लिस्ट बनाने में तो सब होशियार है। अब सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति आए से सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्मृति हो जाती है। जैसे ही तुमको स्मृति आई, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा सदैव प्योर है, तो पवित्रता की स्मृति आ गई ना। आत्मा अनादि स्वरूप में भी प्योर, आदि स्वरूप में भी प्योर और ब्राह्मण जन्म में भी प्योर। तो प्योरिटी ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। प्योरिटी ब्राह्मण आत्माओं का की विशेषता है, श्रेष्ठता है। आज की मुरली में प्रॉस्पेरिटी है, स्वधर्म है, अपवित्रता परधर्म है। पवित्रता स्वधर्म है, ब्राह्मण आत्माओं का विशेष आधार है। जब स्मृति आई है ही पवित्र, तो प्योरिटी को धारण करना सहज हो गया, क्योंकि आत्मा अनादि स्वरूप में भी प्योर है, आदि स्वरूप देवता भी प्योर है और ब्राह्मण भी प्योर है और पूज्य स्वरूप भी प्योर है और फरिश्ता स्वरूप तो है ही परम पवित्र। तो हमारे पांचों ही स्वरूप जब पवित्र है, तो पवित्रता को धारण करना सहज है। तो बाबा कह रहे हैं, स्मृति आने से सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाती है। स्मृति यदि साधारण तो स्थिति भी साधारण, स्मृति यदि शक्तिशाली तो स्थिति भी शक्तिशाली, स्मृति में यदि व्यर्थ तो स्थिति में भी व्यर्थ, स्मृति में यदि कामुकता है तो स्थिति भी कामुक, स्मृति स्मृति में स्मृति में यदि पवित्रता है तो स्थिति भी पवित्र। तो स्थिति का आधार स्मृति है, स्मृति अर्थात याद, स्मृति अर्थात सिमरन, स्मृति अर्थात क्या हम याद कर रहे, सिमरन कर रहे, संकल्प कर रहे। बाबा ने आज की मुरली में कहा एक एक संकल्प में शक्ति बढ़ते जाओ, याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, एक एक संकल्प में सर्व शक्तियों का सार समा दो। क्या कहा आज? एक एक संकल्प में शक्तियों का सार समा दो, एक एक संकल्प में शक्ति भर दो, संकल्पों से सेवा करो, अपनी सूक्ष्म योग की शक्ति से आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करो, अपनी सूक्ष्म योग की शक्ति से आत्माओं को आकर्षित करो। अमृत वेले आत्माओं को इमर्ज करो, उनको आह्वान करो, तो वो जब तुमसे मिलेंगे तो कहेंगे कि हाँ आपने भी हमको याद किया था। तो संकल्पों से सेवा सहज होती है बाबा कहते हैं। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, तो स्मृति को शक्तिशाली बना दो बाबा ने कहा, याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ विदाई के समय, याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। याद की यात्रा कर तो रहे, अब उसको पावरफुल बनाओ, संकल्पों में शक्ति भर दो, शक्तियों का सार भर दो। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी, दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। जो निरंतर कहते रहते मैं बहुत दुखी हूं, वो और ही दुखी होते जाते हैं। जो ये सोचते मैं धनवान हूं, वो गरीब भी होंगे तो स्वतः ही धनवान बन जाएंगे। संकल्प में जो है वही वातावरण में हो जाएगा, वो साक्षात हो जाएगा। जो ये संकल्प करता है गरीब व्यक्ति की मैं बहुत धनवान हूं, तो उसके संकल्प प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति और उसके संकल्पों की रिएक्शन होती है और घटनाएं निर्माण होती है। हम ये संकल्प करेंगे कि मैं बीमार हूं, तो वो संकल्प प्रकृति में जाएगा, रिएक्शन होगी और घटनाएं स्वतः निर्माण होगी, स्वतः ही हम बीमार हो जाएंगे। बीमार होने के बावजूद यदि कोई संकल्प करे मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, तो वो स्वतः ही निरोगी हो जाएगा। गरीब होने के बाद भी कोई संकल्प करे कि मैं धनवान हूं, तो वो धन स्वतः ही उसके पास आएगा। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। तो खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति में रहो तो दुख की स्थिति बन जाएगी। बाप एक ही काम देते हैं, याद करो या स्मृति में रहो, एक ही काम मुश्किल होता है क्या? कभी बहुत काम इकट्ठे हो जाते तो कंफ्यूज हो जाते, इतने काम कब करे कैसे करे। एक ही काम हो तो घबराने की जरूरत नहीं होती। तो बाप ने एक ही काम दिया है बस, एक ही दिया या बहुत दिए? बस याद करो, इसी याद में ही सब कुछ आ जाता है, याद में ही सब कुछ करामात है, जादू है, सब कुछ आ जाता है। तो याद करो कि मालिक भी बालक भी। रूहानी नशे में रहने से क्या मिलता है और भूलने से क्या होता है, दोनों अनुभव है ना। बाप को भूलने से क्या क्या होता है, सबको अनुभव है। भूलने की आदत तो 63 जन्म से, लेकिन याद कितना समय करना है, एक जन्म, और यह जन्म भी कितना छोटा सा। तो सदा शब्द को अंडरलाइन करना। अच्छा, सभी सदा खुश होना, यह सोचो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन होगा, हम खुश नहीं होंगे तो कौन होगा, हम राजी नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे, हम खुश खैरात में नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे, संसार वाले। हम तो बीमार है तब भी राजी है, मरने को है तब भी राजी है। माता भी सदा खुश रहती है या कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आती है?
माता को तो नहीं आता है कभी
दुख की लहर, नहीं आती। किसको आती है फिर?
उनका तो बच्चे है, वारिस है, बस छोड़ के चले जाएंगे।
चाहे कितनी भी दुखमय संसार, कितना भी दुखमय संसार हो, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो। कितना भी दुखमय संसार हो, सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो। संपत्तिवान आत्मा हो, आज बाबा ने कहा, कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हारी शांति, अखंड शांति को कोई भी खंडित कर नहीं सकता, वरदान में है आज, तुम्हारी शांति को कोई भी खंडित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर संपत्तिवान आत्मा हो, तो कोई भी संसार की कोई परिस्थिति तुम्हारी शांति को खंडित नहीं कर सकता है। तुम हो सुख के सागर के बच्चे, चाहे संसार में कितना भी दुख हो, दुखमय संसार में हम सुख स्वरूप बच्चे हैं। दुख में दुख हो जाते हो क्या? जानते हो कि संसार का समय ही दुख का है, संसार में तो अति दुख है और बढ़ने वाला है, लेकिन आपका समय कौन सा है? सुख का है ना, कि थोड़ा थोड़ा दुख का है। संसार में तो दुख बढ़ता ही है, कम नहीं होना है, अति में जाना है, लेकिन आप दुख से न्यारे हो, ठीक है ना, अच्छा है, मौज में रहो, मौज में रहो। कौन रह सकता है मौज में? जो मूंझेगा नहीं, वो कल वरदान था उनको, मेहनत नहीं, मौज में रहते हो। जो स्नेही बच्चे हैं, जो स्नेही बच्चे हैं वो मौज में रहते हैं, उन्हें मेहनत का अनुभव नहीं होता है। जो स्नेही बच्चे हैं वो सदा उड़ती कला में होते हैं, उड़ती कला में सीधा बाप के पास पहुंच जाते हैं, दुख की माया की छाया उन्हें छू भी नहीं सकती, बाप की छत्र छाया के अंदर माया की छाया आ नहीं सकती। वो बच्चों की स्थिति कैसी है? सदा निश्चिंत विजयी स्थिति। वो बच्चे कैसे रहते हैं? सदा निश्चिंत विजयी, मेहनत से मुक्त, सदा मौज में और बाप की छत्र छाया के अंदर। तो अच्छा है, मौज में रहो, क्या भी होता रहे, लेकिन हम मौज में रहने वाले, मुंझने वाले नहीं, कंफ्यूज होने वाले नहीं, मौज में रहना अच्छा है ना। तो क्या सुना? श्रेष्ठ स्थिति का आधार श्रेष्ठ स्मृति। बाबा हमको डबल नशे की याद दिला रहे हैं। पहला नशा है कि मैं परमात्मा बालक हूँ, ईश्वरीय संतान हूँ, ईश्वरीय औलाद हूँ, ईश्वरीय बच्चा हूँ, और दूसरा मालिक हूँ, सर्व खजानों का मालिक, ज्ञान गुण शक्तियां, सर्व संपत्तिवान आत्मा हूँ। तो ये डबल नशा, दूसरे जो नशे है वो नुकसान वाले, नीचे गिराने वाले, देहभान के नशे, संसार के नशे तो बहुत ज्यादा नीचे गिराने वाले, और ये नशे, ये नशा ऊपर उड़ाने वाला है। तो बाबा कहते हैं क्या याद आता है? बचपन याद आता है। तो मेरा बाबा और कुछ याद रहता है? बाबा कहने वाला कौन? बच्चा हुआ ना, तो सदा बच्चा है और सदा ही रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि सदा अपने भाग्य की लिस्ट बुद्धि में हिमाचल रखो, सामने रखो, स्मृति में रखो। स्मृति में रखना ही चाबी है, याद रखना ही चाबी है, खजानों को बार बार यूज करना ही चाबी है। तो मैं कौन, इसका उत्तर तो बहुत देते बाबा, लिस्ट भी सबके पास है, कॉपी में भी नोट कर रखी है, कल की मुरली में, परसों की मुरली में था ना, बाप जो सुनाते उसे दिल में नोट करो। कहाँ नोट करो? कॉपी में नहीं, दिल में नोट करो,
करके दिल में छुपा ले।
अच्छा,
छोड़ देने ना, उन्होंने छोड़ दिया, जैसा आपने बोला ना, दिल में नोट तो रख दिया,
कॉपी में नोट, कॉपी में लिखना और नोट दिल में करना। फिर बाबा कहते हैं स्मृति, तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति, स्मृति साधारण, स्थिति साधारण, स्मृति महान, स्थिति महान, स्मृति में समर्थ तो स्थिति भी समर्थ। तो अपनी स्मृति को ही शक्तिशाली बना दो, एक एक संकल्प को शक्तिशाली बना दो, संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भर दो, याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, अपनी सूक्ष्म योग की शक्ति से आत्माओं को आकर्षित करो। तो स्थिति का आधार स्मृति है। स्थिति डाउन है तो सबसे पहला काम करना है ज्ञान का मनन, ज्ञान का चिंतन, ताकि स्मृति श्रेष्ठ हो जाए, तो स्वतः ही स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। तो खुशी की स्मृति है तो खुशी, दुख की स्मृति है तो स्थिति भी दुखमयी। परंतु बाबा कहते हैं इस दुखमय संसार में मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं, तो दुख हमको आ नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। और बाबा ने केवल एक ही काम दिया है, बाबा कह रहे ज्यादा काम नहीं, बहुत काम इकट्ठे अगर दे दिए जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए बाबा ने एक ही काम दिया है, एक बात को याद करो कि बहुत दिए तो याद करो कि मालिक भी है बालक भी है। तो आज सारे दिन भर याद करना कि मैं परमात्मा बालक हूँ, बच्चा हूँ और मालिक भी हूँ। रूहानी नशे में रहने से क्या मिलता है और भूलने से क्या मिलता है? बाबा को भूलने से क्या क्या मिलता है? बाबा ने कहा इसका सबको अनुभव है, क्या क्या गलतियां होती है, देहभान में आने से क्या क्या गलतियां होती है, किसी के साथ टकराव में आने से क्या गलतियां होती है, संस्कारों की टक्कर में आने से क्या गलतियां होती है, योग कब कब नष्ट होता है हमारा, उसकी लिस्ट बनाओ एक, क्या क्या करने से हमारा योग खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते केवल ये एक जन्म याद करना है तुमको, पवित्रता के लिए बाबा कहते एक ही जन्म, बस इस एक जन्म पवित्र रखो। आज की मुरली में बाबा ने मार्क्स दिए है, मनसा वाचा और कर्मणा। मनसा में आदि से अब तक, जब से ब्राह्मण बने तब तक मनसा में एक भी अपवित्रता का संस्कार इमर्ज ना हो, या फिर पवित्रता अपवित्रता का त्याग और पवित्रता ही श्रेष्ठ भाग्य है। भाई भाई की स्मृति, यह है संकल्प की पवित्रता। दूसरी है वाचा की पवित्रता। वाचा की पवित्रता में मार्क्स किस आधार से है? मधुरता और सत्यता के आधार से। कितना सत्य बोला और कितना मधुर मृदुल सॉफ्ट स्वीट बोला है उसके आधार से। कर्मणा में मार्क्स है संतुष्टता के आधार पर और नम्रता के आधार पर से प्राप्त हर्षित मुक्ता। नम्रता कितनी रही कर्म करते समय, या अहंकार रहा मैंने ये किया मैंने वो किया मैं ऐसा हूं मैंने वैसा किया, तो नम्रता और संतुष्ट कितनी आत्माओं को किया। बाबा ने कभी कहा है अव्यक्त महावाक्य, चाहे कितनी भी भाग दौड़ करो चाहे कितनी भी सेवा करो, यदि निमित्त भाव निर्मल वाणी और निर्माणता यदि नहीं है तो केवल 5% जमा होगा बस, यदि ये काम नहीं है तो ये है मनसा वाचा और कर्मना तीनों की पवित्रता। इस आधार से बाबा ने माफ किया, बाबा ने कहा पवित्र रखते हुए केवल इस एक जन्म के लिए, जो कि जन्म जन्म प्राप्त होगी फिर तुमको पवित्रता। तो जैसी स्मृति वैसी ही स्थिति, तो सदा सुख में रहने वाले हो तुम। संसार में दुख बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, लेकिन आप दुख से न्यारे हो। अच्छा, ओम शांति। Thank you.